प्रवचन सार, प्रवचन सुधा भाग 3, लेक्चर नंबर 157। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आययाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सौरसाहूणं। सुरासुर नरपति वंदने प्रविनष्ट घाति कर्मने प्रणमन करू धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने बड़ी शेष तीर्थं करने सब सिद्ध शुद्धासित्व ने मुनि ज्ञान गृग चारित्र तपवीर चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदो वही हूँ मनुज क्षेत्रे वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने नमस्करण करिये रीते गणधर अने अध्यापको ने सर्व साधु समूह ने तस शुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करू साम्य निजे नाति शिव प्राप्ति बने।
आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है। उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्य उत्ति टीका की रचना की है। इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए थे वो प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं। उसमें से अभी हम तीसरी पुस्तक पढ़ रहे हैं और आए पृष्ठ संख्या 105 पर 105। देखो ये दूसरा पैराग्राफ है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। यहाँ तो ये बात हो रही थी कि ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर केवल ज्ञान की बात हो रही। यहाँ पर महासामान्य का अर्थ क्या है? ज्ञान सामान्य कहा, सामान्य स्वभाव भाव, सामान्य नित्य ध्रुव स्वभाव जो है, और उसमें महाविकास का अर्थ होते वो पर्याय, पूर्ण विकास महाविकास वाली पर्याय। यहाँ केवल ज्ञान की बात हो रही है। वो कैसी है? तो कहते स्वतः ही रहने से। दूसरा पैराग्राफ है ना, केवल ज्ञान अपने से रहा है। वास्तव में तो केवल ज्ञान अपने कर्तापने से उत्पन्न हुआ है। ये सारे षटकारक लगाना, कर्ता कर्म करण और क्या है आगे, हाँ और हाँ छह कारक के नाम याद किए ना। तो केवल ज्ञान अपने कर्तापने से उत्पन्न हुआ है। लक्ष्य भले सामान्य ऊपर हो परंतु वह स्वतंत्र करता है। अरे यह स्वतः रहने से आया ना, कल शाम को कहा था कि जो मोक्ष की केवल ज्ञान की पूर्ण ज्ञान पर्याय उत्पन्न होती है वह स्वतः अपनी पर्याय से करता होकर। देखो केवल ज्ञान की पर्याय स्वयं करता है, वही अपना कर्म है, वही करण है, वही संप्रदान अपादान अधिकरण सब वही है, उसी एक ही पर्याय में लगाना सब। तो कहते स्वतः अपनी पर्याय से करता होकर महासामान्य ऊपर करता होकर विकास होता है। ऐसी तो भाषा भी आपके यहाँ नहीं मिलेगी। सब भाई मिलकर बातें करो तो यह बात मिलेगी? तो कहते नहीं। श्रोता कहते धंधे की कोई मुद्दे वाली बात तो मिल जाए ना, वो धंधे की बात मुद्दा लगती है, ये मुद्दे की बात नहीं लगती है। गुरुदेशी धूल में भी मिले नहीं, मात्र दुख है। यहाँ तो पुण्य पाप का भाव तो दुख है, कमाना विषय भोग आदि तो दुख है, ये तो अशुभ राग हुआ, परंतु दयादान व्रत भक्ति का परिणाम दुख है। ये शुभ भाव को तो पूरी दुनिया करने लायक मानती है ना, करो करो उपदेश भी होता है, तो कहते वह तो दुख है। अब यहाँ का विषय क्या है, इंद्रिय ज्ञान की बात है, परंतु इंद्रिय ज्ञान भी दुख है, यानी पाप पुण्य वो तो दुख रूप है ही है, यहाँ इंद्रिय ज्ञान की बात हो रही, क्योंकि वो परलक्षी ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है। वो कितने प्रकार से पराधीनता है, वो 5 पॉइंट बताए थे, उन परोक्ष क्यों है। भगवान आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप है, ये तो कायम नित्य स्वभाव की बात है, और उससे लक्ष्य से जो ज्ञान होगा वो भी अतीन्द्रिय ज्ञान होगा। क्या कहा फिर से, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप है। अतीन्द्रिय स्वरूप का अर्थ क्या है, वो इंद्रिय के द्वारा जाना नहीं जाने, और उसको जानने के लिए किसी इंद्रिय की भी आवश्यकता नहीं, दोनों ओर देखना उसको। तो भगवान आत्मा अतीन्द्रिय स्वरूप है, वह इंद्रिय की अपेक्षा रखकर जो ज्ञान करता है वह पराधीन दुख रूप है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में तो इंद्रियों का निमित्त है, प्रकाश उपदेश आदि का निमित्त है, पराधीनता बहुत है। यह शरीर तो जड़ मिट्टी है, अंदर जड़ इंद्रिय की अपेक्षा से जो ज्ञान करे वह ज्ञान तो पराधीन है, दुख रूप है। समझ में आया, यह तो सुख रूप है, यह ने अति इंद्रिय ज्ञान तो सुख रूप है, आत्मा की पूर्ण विकास दशा को सुखरूप कहते हैं। यहाँ केवल ज्ञान की बात पहले समझाएंगे, अति इंद्रिय ज्ञान में परिपूर्ण ज्ञान की बात उठाई उन्होंने, और इंद्रिय ज्ञान में मिथ्या दृष्टि ले लिया। अब कहते हैं स्वयं उत्पन्न होता है,
खाली मिथ्या दृष्टि लिया कि चारों चार, क्योंकि चार एक दफा तक बताया कि चारों चार ज्ञान है, वो भी विभाव रूप,
वो तो विभाव गुण पर्याय कहते हैं, वो नियम सार की अपेक्षा है। केवल ज्ञान को स्वभाव गुण कहा और चार ज्ञान को विभाव गुण कहा, क्योंकि अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है, इस तरह से पर्याय को वहां गुण कहा था, ये तो नियम सार की अपेक्षा कल बात आई थी ना। अब यहाँ तो बात हो रही है कि इंद्रिय ज्ञान परोक्ष कहा और अति इंद्रिय ज्ञान केवल ज्ञान कहा, प्रत्यक्ष और पूर्ण सुखरूप है, क्योंकि समझाने के लिए दोनों ओर को रखे वो बात कंपैरिजन में हो रही है। इसलिए आत्मा की पूर्ण विकास रूप दशा ली। अब साधक दशा क्या होगा, थोड़ा अति इंद्रिय ज्ञान है और बाकी वहां राग भी है, इंद्रिय ज्ञान भी मौजूद है, हाँ तो वो साधक है ना, दोनों है ना, निराकुलता भी है और साथ साथ आकुलता भी, जितने अंश में आकुलता है कितने अंश में निराकुलता है। इसलिए यहाँ समझाने के लिए पूर्ण विकास वाली पर्याय ली और यह अकेला इंद्रिय ज्ञान लिया। अब कहते हैं स्वयं उत्पन्न होता है, अपने पर्याय स्वयं करता होकर स्वतः अपने से रही है और स्वयं अपने से उत्पन्न हुई है, यानी उसके किसी की अपेक्षा नहीं है, ना रहने के लिए ना उत्पन्न होने के लिए। वास्तव में तो षटकारक के 2 कारक रख दिए हैं, इसलिए षटकारक आ गए हैं, क्योंकि है ना थोड़े में बताए तो सब समझ लेना, यहाँ तो अपने से रही है और अपने से हुई है।
यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, हाँ, कि विभक्ति तो 8 होती है, उसमें से छठी और संबोधन निकाल दिए तो 6 कारक रह गए, ऐसा
6 कारक रहते हैं, नहीं 2 कारक रख दिए हैं, हाँ। रख दिए नहीं, यहाँ उन्होंने बताए हैं,
बताएंगे वो तो उसकी बात है,
इसलिए षटकारक आ गए। टीका तो टीका है, इस संसार का जितना ज्ञान है विज्ञान वह सब दुख रूप और महापाप है। श्रोता कहते महापाप कहकर बहुत डराते हो गुरुदेवश्री, महापाप ही है, उसमें और है क्या, 5,000 का पगार मिले, 10,000 का पगार मिले, 50,000 का पगार महीने का मिले, वह मुझे मिला यह भाव ही दुख है, दुख है आकुलता है। सेठ माने हेठ, हेठ यानी नीचे, सेठ बैठा हेट, वह सेठ दुख में बैठा है। बातें अलग भाई, दुनिया तो आहा हा। अमेरिका गया हो और मैंने कहा 20,000 का पगार हो जाए तो ओहो हो, मानो हो गए सुखी। अकेले यानी सिर्फ दुखी है, हैरान है। वहां तो 10,000 का पगार भंगी को मिलता है। भंगी मोटर लेकर आए और साफ करे, उनके पास सभी न्यूज जाती होगी। अमेरिकन वाले आते होंगे, मिलते होंगे, सब वहां की बातें करते होंगे।
हम मायामी में गए थे, वहाँ एक भाई झाड़ पोता करने को आती है, वो कार लेके आती है।
वही पता है ना यहाँ पर।
एक दिन का $100 लेती है और 8 घंटा हो गया, चले स्त्री करे, ये करे, सब करे।
हाँ, घंटे की होते हैं।
हाँ, यानी अपने यहाँ क्या बोलते हैं, जो काम करने को आते हैं वो तो पैदल आते हैं, उधर तो कार लेके आते हैं।
कार के बिना वो चलते हैं, वो चलना ही कार है उनकी तो। वहाँ इतनी नहीं है वहाँ स्कूटर की, यहाँ पर अपने यहाँ। हाँ, अमेरिका में 10,000 का पगार तो भंगी को होता है, उसमें क्या नवीनता है। बनिए का लड़का यहाँ से गया हो और वहाँ 10,000 का पगार हो तो ओहो हो जाए, उसमें बचे कितने। वह पूरी पराधीन पराधीन वस्तु है। भगवान आत्मा का स्व आश्रय लिए बिना जितना इंद्रिय के अवलंबन से ज्ञान होता है वह सब पराधीन दुखरूप है। कुछ नहीं, थोड़ा सा होगा सो कुछ नहीं रखा उसमें, ये कह रहे। और ये मनुष्य भव की दुर्लभता हम कर्णानियों के द्वारा इतनी बार इतनी विस्तार से देखते हैं, और मनुष्य हुआ तो सारा उसका लक्ष्य कहाँ है, पैसा कैसे कमा जाए। पढ़ाई भी करता है तो आगे चलकर मुझे कमानी है, इस दृष्टि से ही उसकी नज़र तो वहीं पर पड़ी है कि आगे चलकर कौन से लाइन में पढ़ूं तो कौन सी इजी होगी मेरे लिए, कहाँ ज़्यादा कमाई होगी, यही उसका लक्ष्य रहता है। यानी जहाँ स्वयं का स्वरूप समझने का अवसर अनंत काल में दुर्लभ ऐसा मिल गया है, वो पूरा मनुष्य भव इसने कहाँ कहाँ खोया है। हम देखते 24 घंटे का हिसाब करेंगे तो अपने अपने को पता चलेगा कि हमारा समय कहाँ कितना जा रहा है। यहाँ कहते हैं ज्ञान सामान्य रूप स्वभाव पर महाविकास से व्याप्त होकर स्वतः ही रहने से केवल ज्ञान पर्याय उत्पन्न हुई, वह स्वतः रहने से अर्थात अपने से रही है। सामान्य ऊपर पर्याय अपने से रही है, समझ में आया। अपने से रही, अपने से उत्पन्न हुई, ये सब अपने में ही लगाना उसमें। सूक्ष्म बात है भाई, धर्म कोई साधारण चीज नहीं है कि मंदिर में 2-5 लाख दे दे, खर्च करे दे, इसलिए धर्म हो जाए, ऐसा है नहीं। अफ्रीका में 15 लाख का मंदिर बन रहा है, उसमें लाखों रुपए दिए हो, उसमें क्या हुआ। राग की मंदता की हो तो पुण्य है, और पुण्य माने दुख, माने ने उसका अर्थ है दुख, पुण्य का अर्थ है दुख। वीतराग साहित्य छपवाने में पैसे दिए हो, उसमें राग मंद किया हो तो शुभ भाव पुण्य है और दुख है। कृता पूछते धर्म की प्रभावना के लिए है ना गुरुदेव श्री, प्रभावना अंदर में होती या बाहर में। ये प्रभावना ने सब लोग जाने दुनिया के हम जैन है और कुछ कर रहे हैं, इसको प्रभावना नहीं कहते। उत्प्रय ने उत्कृष्ट भावना, भावना ने एकाग्रता, तो प्रभावना तो अंदर में होगी, और जिसके प्रभावना अंदर में होती है वो तो सहज रूप से बाहर में जो बनना जो है वो बनेगा। आत्मा आनंद स्वरूप का भान होकर, देखो ये प्रभावना का अर्थ बताते, भान होकर ने उसको उन्होंने दृष्टि कर दी है। हाँ, यानी समय दर्शन की बात है। अतीन्द्रिय आनंद की प्र अर्थात विशेषे भावना प्रकट हो, वह प्रभावना है। दुनिया से अलग जात है भाई, श्वेतांबर की यात्रा तो गृहित मिथ्यात्व है। ये गृहित में ग्रह भी किया और नीचे ग्रह भी किया, ग्रह भी किया, वो नीचे वाटी लगाओ खाली। हाँ, श्वेतांबर मत ही गृहित मिथ्यात्व से शुरू हुआ है, कठिन बात है बापू। हाँ हाँ, स्थानकवासी और श्वेतांबर दोनों मत गृहित मिथ्या दृष्टि है, वह जैन धर्म ही नहीं है। ऐसी बात जगत को कठिन पड़े लेकिन क्या हो, लोगों को लगता है वो द्वेष बुद्धि से कहते हैं, अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, ऐसी बातें नहीं है। क्योंकि मूल तो स्वार्थकवासी में उनका जन्म हुआ था और वहाँ स्थानिक वासी संप्रदाय की दीक्षा भी ली थी और बचपन से उनको तो यही एक था कि यानी जो स्वाध्याय की रुचि कहो और देवगुरु शास्त्र के प्रति विशेष भक्ति भाव ऐसा था। पहले तो वहाँ तो उसी के संस्कार में पले बड़े हुए थे ना, तो वही चली। परंतु बाद में जब उन्होंने वहाँ के सभी जितने थे शास्त्र सभी का अभ्यास किया, श्वेतांबर के सभी ग्रंथ ले लिए, जब समय सार हाथ में आया तो उनको ऐसा आहा ये तो अशरीरी होने का मार्ग। और जब और तभी से अंदर से कुछ न्याय तो पहले से आते थे और ये हाथ में आ गया। श्रोता, कठिन धर्म हो तो कठिन ही रहना है ना, रहेगा ना। गुरुदेव श्री, वस्तु तो ऐसी है, आहा हा, स्त्री को मुक्ति बताई, यानी श्वेतांबर में क्या उल्टी प्ररूपना है उसकी बात हो रही। स्त्री को मुक्ति बताई, उसमें क्या हुआ सुशीला बेन, मुक्ति होती है कि नहीं होती है? तो क्या होता है, पंचम गुण स्थान तक जा सकते हैं स्त्री, भले वो तीरंचनी हो या मनुष्य नहीं हो। मनुष्य नहीं कहे, नहीं कहना है मुझे, स्त्री द्रव्य से स्त्री की बात है।
देखो नहीं, कोई, मैं ये पूछ रहा हूँ, यहाँ जो लिखा है कि स्त्री को मुक्ति बताई है, तो बहन ने कहा नहीं होता ऐसा, हाँ, तो कारण क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं होता।
हाँ, आपको कारण बताना है, आपको पूछ रहा, हाँ, कौन सी योग्यता, अंदर में स्थिरता इतनी होती है कि पांचवे गुणस्थान के ऊपर का उनके, हाँ, हो जाए, पांचवे गुणस्थान तक का पुरुषार्थ होता है। पुरुष नग्न रह तो नहीं रह सकते, वो तो कथन आता है, परंतु वो तो कुछ खास कारण नहीं है, यानी उतनी अंदर स्थिरता नहीं हो सकती है। नग्न हो जाए तो क्या स्थिरता होती है, नहीं, क्योंकि ऐसा भी है, क्योंकि आरिकाओं में भी ऐसे बंद रूम में वो भी नग्नता का उनको भी दिया जाता है महाव्रत। हाँ, क्योंकि वो हमने देखा था, वो कौन सी अजितमती अम्मा को लास्ट में दिया था, उसके भी विधि है। वो तो ये हो गई, इसलिए उनको छठा सातवां गुणस्थान तो नहीं आएगा, गुणस्थान तो पांचवा ही रहेगा। अभी उनको था कि नहीं, उसके बाद यहाँ नहीं हो रही है, पर किसी के अगर हो सकता है तो पांचवें गुणस्थान के ऊपर, भले वो बंद रूम में नग्न भी हो जाए या विधिपूर्वक अंगीकार भी करे, फिर भी गुणस्थान तो उनका पांचवा ही होगा।
निमित्त रूप से क्या कारण हो सकते हैं,
वो निमित्त रूप से सहनन उनका, स्त्री को तो ऊपर के सहनन होते ही नहीं है और नीचे के सहनन वाले मुनि
जीव जो है उसको वज्र ऋषभ नाराजा सहनन
ऊपर के तीनों ही नहीं होते,
वो नहीं होते, वो जो आवश्यक है कहाँ के
शपक श्रेणी चढ़ने के लिए या ऊपर के इवन उपशम श्रेणी चढ़ने के लिए ऊपर के तीन गुण सहनन हो तो ही चढ़ सकता है। अब देखो, भोग भूमि की प्रत्येक स्त्री वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाली है, पर इसलिए उनके वहां जाके पांचवा छठा सातवा गुणस्थान होगा ये तो बात नहीं, क्योंकि वहां की योग्यता ही चौथे गुणस्थान की है। स्त्री और पुरुष सारे वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले हैं, सहनन है इसलिए पुरुषार्थ होता है ऐसा भी नहीं है, वो बस उसकी योग्यता इतनी ही है। हाँ, निमित्त रूप से हम उसका वर्णन कर सकते हैं, निमित्त की ओर देखकर हम कार्य का अनुमान लगा सकते हैं, निमित्त से कुछ नहीं हो रहा, पर जहाँ ऐसा हो रहा है वहाँ निमित्त कौन सा है उसकी ओर हम देख सकते हैं, और हम निमित्त की अपेक्षा से देखकर हम कार्य का अनुमान हम कह सकते हैं कि यहाँ ये बात नहीं हो सकती। और ये द्रव्य से स्त्री की बात है, ऐसे भी होते कि पुरुष है द्रव्य से और भाव से स्त्री, ऐसे उसको मनुष्य नहीं कहते। हाँ, उनके तो मोक्ष हो सकते,
प्रवचन सार में ऐसी बात आई थी, अब ये नहीं आई, आ गई है कि स्त्री परे का जो जीव रहता है उसमें इतनी मायाचारी अधिक है,
वो 45
सहज है, कैसे हैं, कि जैसे तीर्थंकर का विहार सहज होता है, वैसे स्त्री गति का जो जीव है, स्त्री पर्याय का, उसके मायाचारी सहज होती है। तो जिसके मायाचारी अधिक वो स्थिरता ओछी।
ऐसा नहीं उसमें ले सकते, क्योंकि चौथे पांचवे गुण स्थान वाले को ऐसी मायाचारी नहीं होगी। जो वहाँ उदाहरण दिला है तो सामान्य जो स्त्रियों का उदाहरण दिया है, वहाँ तो उदाहरण के तौर पर स्त्री को मायाचारी कहा, परंतु वहाँ ऐसा भी लिखा था कि सभी में ये नहीं समझा, आरिका वगैरह हो या अन्य जो कोई स्त्रियाँ हो, तो सब में ये बातें नहीं लागू। हाँ, वो कारण यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, नहीं वो कारण नहीं बनेगा, क्योंकि वो मायाचारी भले हो, पांचवें गुण स्थान तक का पुरुषार्थ हो सकता है, तो मायाचारी ये कारण नहीं हो सकता। देखो, स्त्री को मुक्ति बताई वो तो होती ही नहीं है। हाँ, भगवान को रोग कर दिया, केवल ज्ञान होने पर किसी के रोग नहीं रहता है, न आहार होता है, उनके तो कवलाहार भी बताए हैं, भगवान को दवाई, भगवान को आहार, यानी भगवान का स्वरूप ही मालूम नहीं है उनको। ऐसा मानना तो भगवान की बहुत बड़ी अभिनय है, गृहित मिथ्यात्व है ये तो। आहा हा, वस्त्र सहित मुनिपना काला केर करी नाख्या छे, वह शास्त्र ही झूठे है, दिगंबर शास्त्र मुनियों ने संतों ने कहे हुए लिखे हुए शास्त्र, सर्वज्ञ ने कहे हुए शास्त्र है, क्योंकि वो परंपरा से चली आई बातें है, और सत्य जो सच्चे भावलिंगी संतों के द्वारा उनकी रचना हुई है, स्वयं अनुभव पूर्वक उन्होंने ये बातें स्वयं आगे बढ़ाई है। तो देखे तो के परिवर्तन किया, इसलिए अब खुलासा करते हैं। पहले कहते तो लोग भड़कते, अब तो 44 वर्ष हो गए, मार्ग तो यह है। बापू हाँ हाँ
ले
हाँ, यानी वहां यानी परिवर्तन करने के बाद इतना खुलासा किया, वहां रहते हुए बातें बताते थे पर इतनी बातें कि ये सब झूठा वगैरह ऐसा नहीं कहते थे। नहीं नहीं, बाद के, क्योंकि और एक साल के बाद उनका देहांत हुआ था, क्योंकि 45 साल वहां रहे थे और परिवर्तन करने के बाद 45 साल यहाँ रहे, उसमें से 44 हुए यहाँ पर। हाँ, 107 नंबर पेज पर आए देखो, लेकिन उसे कहाँ पड़ी है, बनिए को फुर्सत कहाँ है, सारा दिन पाप किया करे उसी में उलझ गए, हिसाब की वही में और लेने देने में उलझ गए, उसमें सत्य क्या है, सत्य असत्य क्या है, उसका निर्णय करने का समय ही कहाँ है। अरे रे, ऐसा मनुष्य भव चला जा रहा है और यहाँ से कहाँ जाएगा, अंदर में आत्मा के भान बिना मिथ्या श्रद्धा को पकड़ रखी है, वह कौन से भव में जाएगा। अरे स्वर्ग में जाएगा मिथ्यात्व के साथ तो भी क्या फायदा, वहां से चला जाएगा एकेंद्रिय में। परमात्मा कहते हैं उसका कोई ठिकाना नहीं है बापू। हाँ हाँ, इसमें आया था मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, तो एकेंद्रिय में जाएगा, वहां कितने काल तक रहेगा उसका कोई प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं हिसाब नहीं, आपको याद है ना, क्योंकि हाँ नहीं नहीं क्या हुआ था, जयपुर शिविर चल रही थी और हम वो थर्ड फ्लोर पर रहते, सेकंड फ्लोर में वो यशपाल जी थे ना, कि हम सेकंड फ्लोर में थे,
हम दोनों सेकंड फ्लोर वो फर्स्ट फ्लोर में थे, वहां से
तो यशपाल जी अन्ना उनकी तरफ से एक विद्यार्थी बुलाने को, क्या आपको बुलाया है, नीचे सारे पंडित इकट्ठे हुए, उनके सब दोपहर में अनेक विद्वान इकट्ठे होते थे और चर्चा चलती थी, तो उन्होंने कहा है, ऐसा ये प्रश्न हुआ है कि टोडरमल जी साहब को भी प्रमाण नहीं मिल रहा था, प्रमाण का अर्थ उन्होंने कुछ अलग ही कि इसका कोई प्रमाण नहीं, हम क्या कहते, अरे कितना काल जा लेगा, इसका कोई हिसाब नहीं, यानी इसका कोई प्रमाण नहीं, उस अर्थ में उन्होंने प्रमाण शब्द लिया था। तो देखो यहाँ उनको प्रमाण नहीं मिल रहा है ऐसा कहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, एक बार एकेंद्रिय में जाता है तो उत्कृष्ट में उत्कृष्ट असंख्यात तुद्गल परावर्तन काल तक उसका घूमना होता है, यानी कितना काल वहां बिताएगा, कितना अनंत काल, इसका कोई प्रमाण नहीं, प्रमाण नहीं नहीं, इतना कोई हिसाब नहीं। हाँ, पांचों स्थावर में, एक ही में अगर रहेगा केवल निगोद में तो ढाई पुद्गल बराबर, कभी निगोद में, कभी अन्य में, कभी पृथ्वी का, कभी एक केंद्र में रहा बस, उसका उत्कृष्ट काल है असंख्यात पुद्गल परिवर्तन। और पर इतना पूरा काल रहना जरूरी नहीं है, परंतु कितना अनंत काल रहेगा इसका भी क्या पता किसी को, इसलिए कहते कि अभी तो काम कर ले अपना।
जैसे हम कहते हैं अरविंद भाई के पास इतना पैसा, उसका कोई प्रमाण नहीं,
हिसाब नहीं, यानी उस हिसाब, हिसाब के अर्थ में प्रमाण शब्द उन्होंने यूज किया है,
यानी बिना हिसाब का भी पैसा आपके पास
नहीं, ये
आपके पास कुछ नहीं है जो है वो आपका नहीं है हाँ देखो यहाँ लिखा ना, कोई ठिकाना नहीं, उस अर्थ में वो प्रमाण नहीं आया था। इसलिए केवल ज्ञान उत्पन्न करने का साधन, लोगों को लगता है अरे वो हाई लेवल की बातें नहीं करो, अरे हाई लेवल नहीं, अभी उसका लक्ष्य करेंगे तो मार्ग तो यहीं से शुरू होगा। हाँ बिल्कुल, केवल ज्ञान उत्पन्न करने का साधन आत्मा स्व संवेदन आनंद स्वरूप है। देखो स्व संवेदन, अपना ही स्वयं का अनुभव करे, वेदन करे, ऐसा उसमें स्वभाव ही पड़ा है और आनंद स्वरूप है, उसका वेदन करके आनंद में रहना, ये कोई दुख रूप भाव है नहीं। लोगों को लगता है कि मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, बहुत तपस्या करना पड़ता है, वो दुख रूप है, वो दुख रूप नहीं सुख रूप है। तो कहते वेदन करके आनंद में रहना, वह केवल ज्ञान की उत्पत्ति और सुख का साधन है। देखो केवल ज्ञान में तो परिपूर्ण सुख हो या अनंत सुख है, तो उसका मार्ग है वो भी सुख रूप होगा कि दुख रूप होगा, बोलो तो जब से आत्मा का लक्ष्य करके बिल्कुल चौथे गुण स्थान वाले का तो कितना अंशिक हो गया, अभी जस्ट चालू हो गया, फिर भी वो सुखरूप भाव है उसका। यानी जो अनंत सुख है उसका साधन भी सुखरूप ही है। यहां यह बताते हैं स्वयं उत्पन्न होता है इसलिए आत्माधीन है, देखो, और आत्माधीन होने से आकुलता नहीं होती, केवल ज्ञान आत्माधीन होने से आकुलता नहीं होती, पराधीन हो तो दुख है, आकुलता है। यह तो आत्मा के अधीन होता है, अंदर परमात्मा शक्ति पड़ी है, उसके आश्रय से केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है तो वह सुखरूप है। अब दूसरा पॉइंट, ये अनाकुल सुखरूप क्यों है उसकी बात हो रही है। समस्त आत्म प्रदेशों में परम समक्ष, समक्ष ने प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोग रूप होकर आत्मा के असंख्य प्रदेश है। जैसे हजार कड़ी की सोने की साकली चेन होती है, वैसे यह भगवान असंख्य प्रदेश की कड़ी है, असंख्य प्रदेश रूपी कड़ी की साकली है। असंख्य प्रदेश, वो ऐसे कोई माला के समान नहीं समझना हो कहते हैं समस्त आत्म प्रदेशों में परम समक्ष अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञानोपयोग रूप होकर व्याप्त होने से समंत है। ऊपर तो बताया था कि महाविकास से व्याप्त होकर, अब यहाँ कहेंगे ज्ञानोपयोग रूप होकर व्याप्त होकर, यानी यह पर्याय की बात हो रही है यहाँ पर, केवल ज्ञान पर्याय की। इसलिए अशेष द्वार खुले हुए हैं, अशेष ने भी कुछ बाकी नहीं रहे, यानी सारे द्वार खुले हुए अर्थात सब असंख्य प्रदेश खुल गए। एक केवल ज्ञान ही सुखरूप है और इस प्रकार कोई द्वार बंद न होने से आकुलता नहीं होती। मूल तो आकुलता नहीं है यह बताना है ना? हम तो इंद्रियों के द्वारा केवल स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द इतने को ही जानते हैं, उसमें भी कितनी कितनी लिमिट, वो सब पहले बताया है। अब ये तो अनंत गुणों के अनंत पर्यायों को जानेंगे कि नहीं जानेंगे, खाली एक समय के नहीं पूरे तीन काल के और सभी द्रव्यों के, जो अरूपी है धर्म धर्म आकाश काल, उनके हमें तो वो हमारे उनका एक एक गुण मालूम है, और सर्व भगवान उनके भी अनंत गुण जानते हैं, सबकी पर्याय भी जानते हैं। और जीवों में भी कितनी विविधता हम देखते हैं, एक जीव के तीन काल की पर्याय में कितनी विविधता है। ऐसे अनंत जीवों में उसके पूरे जो सीक्वेंस होगा हर एक का, तो वो एक समय में जानते हैं। यानी अभी जानने से कुछ बाकी नहीं रहा, शेष नहीं रहा। मूल तो आकुलता नहीं, ये बताना है हमें। आकुलता कब है? हम जानना चाहते हैं, चाह पड़ी ना, इसको जानो उसको जानो, क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ये तो आकुलता है। तीसरा पॉइंट, समस्त वस्तुओं के गेयाकारों को सर्वथा पी जाने से, यह कल आया था। जगत में जितने गेय है अर्थात जानने लायक चीज, अनंत आत्मा अनंत परमाणु, एक एक परमाणु और एक एक आत्मा में अनंत अनंत गुण और अनंत पर्याय, ये सब गेय जानने लायक है। सब गेयाकारों को सर्वथा पी जाने से, सब गेयाकार ज्ञान में आ गए अर्थात ज्ञान में सब गेयाकार का ज्ञान आ गया, पी गया। इसमें क्या होता है, ज्ञान बहुत बड़ा है और ये तो सब उसमें एक कॉल हो गया उसके अंदर। कोई गेयाकार ज्ञान बिना का रहा है ऐसा है नहीं। तीन काल तीन लोग गेय है वह ज्ञान में जानने में आ गया है, सर्वथा पी जाने से। लोकालोक जो गेय है, आत्मा में जो केवल ज्ञान उत्पन्न होता है उसमें लोकालोक पी जाते हैं, उससे अनंत गुना यदि गेय हो तो भी जानने की शक्ति अपार है। कितनी बार बताए, यहाँ तो एक लोकालोक है, ऐसे अनंतानंत लोकालोक है तो भी वो प्रकट शक्ति है केवल ज्ञान की। देखो जैसे आकाश अनंत प्रदेश है और उसमें अवगाहन शक्ति है, तो आकाश ने अन्य पांच द्रव्यों को अवगाहना दी, कितने अपने कितने प्रदेशों में दे, अपने कितने उस कितने भाग प्रमाण है उसका, वो जो लोक है वो पूरे आकाश का कितना भाग है, अनंत भाग। तो आकाश द्रव्य ने अपने अनंत वे भाग में सबको समा दिया, ऐसे केवल ज्ञान के प्रकट जानने की शक्ति इतनी है उसके अनंत वे भाग में पूरा लोकालोक जाना गया, ये कह रहे हैं। ऐसे अनंतानंत गेय हो तो भी जानने की शक्ति अपार है। ऐसा 108 पेज, कल भी बात बताई थी उन्होंने, ऐसा केवल ज्ञान। हमें तो केवल ज्ञान का निर्णय करने जाते हैं तो ज्ञान स्वभाव की अपूर्व महिमा आ जाती है। केवल ज्ञान उपेय है, नाम प्राप्त करने के लायक है। और उसका उपाय, देखो जिसके लिए उपाय करते उसको उपेय कहते हैं। उपेय क्या है? केवल ज्ञान जो प्राप्त करना है। तो कैसे प्राप्त होगा, तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय आत्मा का आश्रय लेकर समय दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना यह है। तो यह आत्मा का आश्रय लेना है तो शिखर जी में जाना पड़ेगा कि शत्रुंजय में, बोलोगे कौन से मंदिर में मिलेगा? ये तो सभी हमारे संतों ने बताया ना, ना पर्वत चढ़ने से होता है, ना केश लूंचने से होता है, ना वस्त्र त्यागने से होता है, ना मंदिर में मिलता है। ये भगवान आत्माएं ने स्वयं स्वभाव भाव नित्य ध्रुव स्वभाव जो है, तो उसका उपाय आत्मा का आश्रय लेकर समय दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करना यह है। तो आप कहेंगे आश्रय लिया और प्रकट नहीं हुआ, तो ऐसे शंका मत करना। उसका निर्णय करके आश्रय लेना है ना, उसी में एकाग्र होना, यानी जो पर्याय उसी को एकाग्र होते हुए उत्पन्न होती, उसके अतीन्द्रिय ज्ञान आनंद सहित ही उत्पन्न होते। वो कैसे होगा क्या, उसकी चिंता मत करो, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही स्व संवेदन होना और आनंद अतीन्द्रिय आनंद का उसका स्वभाव है, और स्वभाव है तो उसमें से वो तो पर्याय प्रकट होने से ही रहे। तो अभी तक क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसका हमने उसको स्वीकार नहीं किया, परलक्षी ज्ञान में रुका रहा। ज्ञायक भाव का दर्शन, ज्ञायक भाव का ज्ञान और ज्ञायक भाव का आचरण, आचरण ने उसी में रमना, यह उपाय है। यानी समय दर्शन ज्ञान चारित्र ये उपाय है और केवल ज्ञान उपेय है। इस उपाय का वह फल है, समझ में आता है? समय सार में अंत में उपाय उपेय आता है, वो परिशिष्ट में आता है ना, उपाय और उपेय। यहाँ केवल ज्ञान उपेय है ऐसा बताना है, पूर्ण ज्ञान पूर्ण आनंद उपेय है यानी फल है। किसका? तो कहते उपाय का। तो उपाय क्या? कि ज्ञायक स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी श्रद्धा, उसका ज्ञान, उसका आचरण करना, यह उपाय है। और इस उपाय से केवल ज्ञान उपेय प्राप्त होता है। हमने उपेय किसको माना? केवल ज्ञान को माना कि नहीं माना? उपाय किसका हो रहा है? भूख का उपाय हो रहा है। इलाज किसका कर रहे हैं? भूख का कर रहे हैं, रोग का कर रहे हैं, और क्या क्या कर रहे हैं? पैसे कमाने का, हाँ, इच्छा पूर्णता का। इच्छा पूर्ण नहीं होती है, वो तो अभी वस्तु मिली इसलिए उसकी इच्छा नहीं करता, दूसरे की इच्छा करता है, परंतु उसके उपाय करता है ना। उसने उपेय किसको मान लिया है? ये परवस्तु को, विषयों को, यानी जिसको उसने भोग और सुख के साधन माना है उसको उसने उपेय माना, और उसी का उपाय करता रहता है। जो परवस्तु में इसका उपाय कुछ नहीं चलेगा, वो भले विकल्प कर सकता है उसके बारे में कि मैं ऐसा करूं, मैं वैसा करूं, मैं ये प्राप्त करूं, मैं वो प्राप्त करूं, मैं या ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, तो पूरी इसी में उसके उलझन यानी 2400 घंटे उसके विकल्प इसी बारे में चलते रहते हैं, परंतु उसमें उसको उपेय की प्राप्ति, क्योंकि उसमें सुख है ही नहीं है। तो यहाँ कहते कि उपाय उपेय क्या है? तो केवल ज्ञान। और कौन से उपाय से होगा? वो भी पूर्ण स्वाधीन है कि मैं अपने स्वयं ही मैं भगवान आत्मा हूँ, स्वभाव भाव नित्य ध्रुव भाव हूँ, और मुझे उसी में उसी का पहले निर्णय करके उसी में एकाग्र होना है। एकाग्र होना वो तो ज्ञान की परे, हर समय तो जानना जानना चल ही रहा है, तो उसी को जानता रहूं तो समय दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट होगा, और इसी उपाय से केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी। यानी वो कितना सरल है, कोई परवस्तु की वहां कोई अपेक्षा नहीं है, पूरा स्वाधीन मार्ग है। वो आता ना, सबसे स्वाधीन है, सहज है, हाँ, और दुख रूप तो है ही नहीं, आनंद रूप है। क्या कहते? देखो आगे, इस उपाय से केवल ज्ञान उपे प्राप्त होता है, कोई दया दान व्रत तप भक्ति करने से वह प्राप्त नहीं होता, ऐसा कहते हैं। और लोगों को ऐसा ही लगता है ये कुछ करे तो प्राप्त होगा, ऐसे खाली बातें आत्मा आत्मा करने से होगा क्या? ऐसा पूछते भी है, कुछ करे तो पाएंगे, तो क्या करे? तो ये मेरा कार्य है ऐसा मान लिया उसने। ये शुभराग जो है, अकेले शुभराग नहीं, वो क्रिया शरीर की, ये मेरी है और वो करने जैसे है और उसी से मुझे आगे बढ़ना होगा, ऐसी मान्यता पड़ी है। देखो बाहर की भक्ति, अरे साक्षात दिगंबर में भी परमात्मा की भक्ति आदि है, वह शुभ भाव है, वह धर्म नहीं। आए आए ने ऐसे भाव आते हैं, पाप से बचने को आए, लेकिन वह धर्म नहीं। मुनियों के भी शुभ भाव आते हैं कि नहीं? देव दर्शन स्तुति वंदना सब कुछ है उनके भी। ज्ञायक स्वरूप भगवान चिदानंद प्रभु, पूर्ण अनंत गुण का एक रूप प्रभु, कब से ऐसा ही कैसा, ऐसा कैसा, अनादि से अनंत काल तक ऐसा कैसा रहने वाला, वो कितने भी हीन पर्याय में क्यों ना पहुंचा हो, निगोद में गया, एकेंद्रीय में गया, कई द्विनिरादि में हट का, परंतु ज्ञायक भाव में रंच मात्र भी उसमें कुछ कमी नहीं हुई। तो कहते कि ज्ञायक स्वरूप भगवान चिदानंद प्रभु, पूर्ण अनंत गुण का एक रूप प्रभु, उसके सन्मुख होकर प्रतीति ज्ञान और आचरण होना, यह केवल ज्ञान उपे नाम आनंद के कारण का यह उपाय है। यह कहाँ सन्मुख होना है? तो अपने ही सन्मुख होना है। ये पूछते हैं ना, हमको पूछते हैं भक्तामर पढ़ना है, कौन से दिशा में मुंह करें, क्या करें, तो आत्मा का अनुभव करने के लिए कौन से दिशा के सन्मुख होना चाहिए, बोलो? आत्मसन्मुख होना चाहिए। वो बाहर की दिशा से क्या मतलब है? श्रोता कहते हैं, उपाय तो अपूर्ण है और उपेय पूर्ण है। देखो प्रश्न समझ में आता है, उपाय क्या है? समय दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति हुई है तभी वो मोक्ष मार्ग है, और उपाय प्राप्त होना तो पूर्ण है, केवल ज्ञान वो परिपूर्णता है। तो इसलिए पूछा, उपाय तो अपूर्ण है और उपाय पूर्ण है। गुरुदेव श्री, आत्मा का अपूर्ण रूप से परिणमन होना यह उपाय, और पूर्ण परिणमन होना वह उपाय है। देखो कैसे कोई भी प्रश्न हो सटीक उसको उत्तर। फिर से ये जो समय दर्शन ज्ञान चारित्र जो साधक दशा है उसकी बात है, मोक्ष मार्ग जिसको कहेंगे वो अपूर्ण रूप से परिणमन है, जिसको कहेंगे स्वभाव परिणमन है, परंतु अभी पूर्णता को नहीं पहुंचा है, उसको उपाय कहा, और पूर्ण परिणमन को उपेय कहा, केवल ज्ञान को। ज्ञान का ही दो भाग, ज्ञान स्वरूप का अपूर्ण परिणमन, ज्ञान स्वरूप परिणमन हो, यानी अभी सम्यक ज्ञान हुआ है, परंतु जब तक केवल ज्ञान नहीं तो अल्प ज्ञान है, तो अधूरा है ना, अपूर्ण है। परंतु ज्ञान स्वरूप का अपूर्व परिणमन है, अपूर्ण परिणमन है वह उपाय, और उसका पूर्ण परिणमन वह उपेय। परंतु शुभ भाव को उपाय और ज्ञान का परिपूर्णता उसको उपेय ऐसा नहीं कहा, उसका फल। श्रोता, आपने जो ज्ञान कहा वह तो अपूर्ण है, बारंबार वही प्रश्न को दोहरा है कि अपूर्ण को आप उपाय कह रहे हो, पूर्णता को उपाय कह रहे हैं। गुरुदेव श्री, अपूर्ण है इसलिए तो उपाय कहा, और पूर्ण उसका फल है, अपेक्षा से बात है, बाकी तो सर्व सामान्य वस्तु है, उसके आश्रय से केवल ज्ञान होता है। क्या कहें आप, यहाँ तो उपाय जो बताया है वह भी पर्याय है, उपेय है वो भी पूर्ण पर्याय है, तो अपेक्षा से बात है। कहीं कहीं मोक्ष मार्ग को कारण और मोक्ष को कार्य कहेंगे अपेक्षा से, और कहीं कहेंगे वो पर्याय पर्याय का कार्य है, वो पूर्व पर्याय से भी वो नहीं होता, जिसे अनंत पूर्व पर क्षणवर्ती पर्याय, उसको भी कारण रूप से कहीं भी लेते हैं उसको, क्योंकि कौन से का क्षय हुआ व्यय हुआ उसकी अपेक्षा से कहेंगे ये मोक्ष मार्ग पूर्व पर्याय थी और मोक्ष बाद में हुई, तो उसको कारण कहने की पद्धति है, क्योंकि पूर्व पर्याय का ज्ञान कराना है। यहाँ पर भी अपूर्ण शुद्ध पर्याय है, और वो पूर्ण शुद्ध पर्याय केवल ज्ञान, तो अपूर्ण परिणमन है उसको यहाँ उपाय कहा, और केवल ज्ञान को उपेय कहा। तो कहते अपेक्षा से बात है, यानी सर्वथा ऐसा ही नहीं, कहीं कहीं उसका निषेध भी कहेंगे, जहां जिस अपेक्षा से बात है वहां उसको समझना चाहिए। बाकी तो सर्व सामान्य वस्तु है, जिसको सामान्य के आश्रय से विशेष प्रकट होता है, पर्याय से पर्याय नहीं होती, वो बात अभी बता रहे, उसके आश्रय से केवल ज्ञान होता है। उपाय कहा वह अपेक्षित कहा, अपेक्षित क्या करते थे, किसी अपेक्षा से वो बात है, सर्वथा ऐसा नहीं समझना। बाकी तो त्रिकाल भगवान आनंद का नाथ प्रभु, जैसे हम कहते हैं व्यय रूप पर्याय से दूसरी पर्याय कैसी होगी, जैसे सोने की बंगड़ी थी उसका हमने अभी हार बनाया, तो बंगड़ी में से हार बना कि नहीं, बोलो, सोने में से बना, बंगड़ी का व्यय होकर हुआ, तो अपेक्षित कथन कहा उसको। सच्चिदानंद स्वभाव, सत शाश्वत ज्ञान और आनंद का सागर, शाश्वत है ना, नित्य है, ध्रुव है, उसको शाश्वत कह दिया, उसके अवलंबन से आश्रय से केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। उपाय से उत्पन्न होता ऐसा कहना वह भी व्यवहार है ना, क्योंकि पूर्व पर्याय को यहाँ उपाय कहा है, अधूरी पर्याय को उपाय कहा है, तो ये व्यवहार हो गया, ये कथन को व्यवहार कहते हैं, एक कहना वह व्यवहार है। देखो व्यवहार और व्यवहार जो होता है वो कथन में होता है, यहाँ स्वयं उत्पन्न होता ऐसा कहा ना, पूर्व पर्याय के कारण से उत्पन्न होता है ऐसा नहीं कहा। बहुत सूक्ष्म बातें बापू, धर्म वीतराग धर्म जिनेश्वर का धर्म अलौकिक है, जैन संप्रदाय में जन्म लिया उसको मालूम नहीं तो अन्य को तो कहाँ मालूम होगा। जैन संप्रदाय में जन्मा इसलिए ये सब मालूम है, वो स्वयं पढ़ेगा, निर्णय करेगा, तो ये बात उसको ख्याल में आ जाएंगे। यहाँ कहते हैं, गेयाकारों को सर्वथा पी जाने से परम विविधता में व्याप्त होकर, क्योंकि उसके जानने में इतने सारे विविध गेयाकार आ रहे हैं। विविधता अर्थात परमाणु, जड़, चेतन, सबकी विविधता है, उन सबका ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान में सबका ज्ञान हो जाता है, विविधता भिन्न भिन्न का सबका ज्ञान हो जाता है। तो कहते परम विविधता में व्याप्त होकर रहने से अनंत पदार्थों में विस्तृत है। ज्ञान अनंत पदार्थ में विस्तृत नाम प्राप्त हुआ है, प्राप्त हुए ना, उसने उनको जान लिया है। ज्ञान अपना क्षेत्र छोड़कर बाहर किसी पर पदार्थों में जाता नहीं है, इसलिए सर्व पदार्थों को जानने की इच्छा का अभाव है। बाद में भगवान को पदार्थ जानने की इच्छा का अभाव है, और इस प्रकार किसी पदार्थ को जानने की इच्छा न होने से आकुलता नहीं होती। कोष्ठक में जोड़ लगाते हैं, कुछ भी जानने की इच्छा नहीं, इसलिए अनाकुलता है, आकुलता है नहीं। इच्छा हो तो आकुलता है, कुछ भी जानने की इच्छा रहे तो वह आकुलता है। आहा, श्रोता पैसे प्राप्त करना आकुलता है, अरे प्राप्त कहाँ से करेगा। समाधान, पैसा फैसा धूल की कौन बात करे। ये बीच में ऐसा प्रश्न उठते तो सारे हम कहते ना कि जो टेम्पो आता है ना वो तो आत्मा संबंधी, ये पैसे की बात आती है तो फिर नीचे डाउन हो जाता है। काहे का इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट तो कम करना है। नहीं, वो धारा टूटती है, ये ऐसे कैसे प्रश्न पूछते हैं बीच में। पैसा फैसा धूल की कौन बात करे, खर्च कौन करे और प्राप्त कौन करे। वह तो जड़ है, जड़ को आत्मा खर्च कर सकता नहीं, जड़ को आत्मा रख सके नहीं, जड़ को आत्मा प्राप्त कर नहीं सकता, ऐसा है बापू। जगत से उल्टा है, आहा हा, लोग उसे एकांत कह देते हैं कि सोनगढ़ वाले एकांत है, एकांत है, एकांत है। बात सच्ची है, सम्यक एकांत है, सत्य एकांत है, यानी ऐसा ही है, अन्यथा नहीं है। प्रभु यहाँ कहते हैं, ज्ञान में सर्व पदार्थ का ज्ञान हो गया, इसलिए आकुलता नहीं है। तीन बोल हुए, कल यहाँ तक चला था। अब चौथा पॉइंट, सकल शक्ति को रोकने वाला, चौथा बोल है ना, सकल शक्ति को रोकने वाला कर्म सामान्य निकल जाने से, यानी ज्ञान में से निकल जाने से, ज्ञान अत्यंत स्पष्ट प्रकाश के द्वारा प्रकाशमान। जो प्रतिपक्षी कर्म है, कौन सा ज्ञान का प्रतिपक्षी, ज्ञानावरण कर्म, उसका पूरा ही नाश हो गया, सर्वथा निकल गया। ज्ञान अंदर से पूर्ण तेजस्वी प्रकाशमान हो गया। सूर्य का प्रकाश जैसे पूर्ण खिलता है, वैसे भगवान का ज्ञान, केवल ज्ञान पूर्ण खिलता है, हा हा, तेजस्वी स्वभाव में व्याप्त होकर रहने से विमल है, अर्थात निर्मल ज्ञान है। निर्मल ज्ञान, केवल ज्ञान निर्मल है, इंद्रिय ज्ञान समल है। इंद्रिय ज्ञान समल है, इंद्रिय ज्ञान दुख रूप है, इंद्रिय ज्ञान आकुलता है। भगवान का ज्ञान, केवल ज्ञान निर्मल है, इसलिए अनाकुल है। इसलिए सम्यक रूप से इन्हें बराबर जानता है, और इस प्रकार संशयादि रहितता से जानने के कारण आकुलता नहीं होती। यदि संशय बना रहे, विपरीतता, तो ये तो कहते आकुलता का कारण होता है। यहाँ कोई बिल्कुल है वैसा सब कुछ जान लेते हैं, कोष्टक में उसका जोड़ लगाते हैं, भगवान को आकुलता नहीं है। समस्त संशयादि रहितता के जानने के कारण आकुलता नहीं होती। चार बोल हुए, पांच थे ना, अभी नेक्स्ट पेज पर आते, 110 नंबर के पृष्ठ पर पांचवा पॉइंट, जिनने त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत समर्पित किया है, ऐसे कौन है, सारे द्रव्य, एक ही समय बताया है, ऐसे लोकालोक में व्याप्त होकर रहने से। लोकालोक कैसा है? जिसने अपना त्रिकाल का स्वरूप केवल ज्ञान को समर्पित कर दिया, यानी वो प्रमेयत्व गुण है ना उसमें, तो प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य ने अपने सारे गुण और तीनों काल की पर्याय केवल ज्ञान को समर्पित करें, वो तो झलका ही उसके अंदर। क्या कहते हैं? जगत की जो सब चीज है वह केवल ज्ञान में एक समय में अर्पित हो गई है। एक सेकंड के एक समय में सब ज्ञान हो गया। फिर से दोबारा उसको रिपीट कर रहे, जिनने त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत समर्पित किया है, एक ही समय बताया है, ऐसे लोकालोक में व्याप्त होकर रहने से, यानी केवल ज्ञान है वो लोकालोक में व्याप्त होकर रहा है, अवग्रहादि रहित है, अर्थात पदार्थ को पहले थोड़ा जानना, फिर निर्णय करना, फिर धारणा करनी, ये भगवान को है नहीं। एकदम एक समय में लोकालोक का ज्ञान आ गया है, आहाहा, यह तो नमो अरिहंताणम में केवल ज्ञान कैसा है उसकी बात चलती है। नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम बोला करे, लेकिन उसके स्वरूप की खबर नहीं, और ये संसार के सियाने संसार में गहरे नीचे चले जाएंगे। केवल भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं, वो भगवान का स्वरूप क्या है, कि एक केवल ज्ञान के एक समय की पर्याय की कितनी ताकत है उसको नक्की करना पड़ेगा। वो केवल ज्ञान को भगवान को नक्की नहीं करना, अपने ज्ञान स्वभाव को नक्की करना है, क्योंकि ऐसे केवल ज्ञान अनंत काल तक यहाँ से निकलने वाला है, जो अंदर है स्वभाव में पड़ा है वही प्रकट होने वाला है। अर्थात बहुत परिभ्रमण करेंगे, हाँ, केवल ज्ञान के सयाने सुख में जाएंगे, हाँ, एक पागल सयाने और एक सयाने सयाने, दुनिया के सयाने वे पागल सयाने, ऐसी बात अलग है बापू। यानी दुनिया के जो सयाने कहलाते वो सारे पागल हैं। अंतर आनंद मूर्ति प्रभु, आनंद का धाम, स्वयं ज्योति सुखधाम। देखो ज्ञान को ज्योति कहने में आता है, अंदर कोई अन्य प्रकार कोई सफेद लाल ऐसा कोई प्रकाश नहीं होता है। स्वयं ज्योति और आनंद का स्थान, आनंद वहां है, उस आनंद के साथ जो केवल ज्ञान हुआ वह अनाकुल ज्ञान हुआ। इस अनाकुल ज्ञान में सब पदार्थ एक समय में अर्पित कर देते हैं, लोकालोक ज्ञान में आ जाता है, आ जाता है नहीं, उसका ज्ञान हो जाता है। चीज तो वहां रहती है, समझ में आया, पदार्थ तो पदार्थ में है, उस संबंधी ज्ञान यहाँ हो जाता है, अपने में अपने से है ना, उसमें त्रिकाल का अपना स्वरूप युगपत, यानी दूसरे पदार्थ त्रिकाल का अपना स्वरूप, त्रिकाल का अपना स्वरूप यानी तीनों काल की पर्याय गुण तो उसके साथ आ ही गए, अर्थात एक साथ समर्पित किया है। तीन काल तीन लोक के पदार्थ एक समय में ज्ञान में जानने में आ गए, एक ही समय बताया। तो मेरा प्रश्न है, ये जो लोकालोक जो प्रमेय तो गुण है, तो कितने ज्ञानों में वो झलकता है? प्रमेय किया ना, तो एक ही केवल ज्ञान में प्रमेय किया ना, सभी सिद्ध है ना, सभी सिद्ध जितने अरिहंत सिद्ध है सभी केवल ज्ञानों में उसका तो प्रमेय हो गया है, उसका अनंत केवल ज्ञानी है। एक लोकालोक अनंत केवल ज्ञानियों के ज्ञान में एक ही समय में युगपत वो प्रकाशित हो रहे, प्रमेय हो रहे कि नहीं हो रहे? ऐसा नहीं कि एक लोकालोक और एक केवल ज्ञान है रो उसमें समर्पित कर रहा है, ऐसा नहीं है। जितने केवल ज्ञानी है सब उसको जान रहे कि नहीं, तो सब में वो प्रमेय हो रहा है। हाँ वो जानते हैं, क्योंकि एक केवल ज्ञानी के ज्ञान में सारे केवल ज्ञान भी झलक रहे हैं, केवल ज्ञान में भी प्रमेय तो होगा कि नहीं होगा, वो भी एक एक वो भी अनंतों में प्रमेय कर रहे हैं अपने आप को। अभी ऐसा सोचते रहे ना, दिमाग नहीं हो तो केवल ज्ञान हो जाएगा, चिंता क्यों करती है? हाँ 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 देखो अभी हम ये हो गया ना ये पैराग्राफ, एक ही समय बताया, यहाँ रुकेंगे अभी हम। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो खालो सोवाणी मस्तकनम चला देत हो। वीरेश भाई
नमो सिद्धानं नमो आयनं नमो वज्ञानं नमो लोहे सर्वसाम नमो यंत्रानं नमो सिद्धानं नमो आयनं नमो वज्ञानं नमो लोहे सर्वसाम नमो यंत्रानं नमो सिद्धानं नमो आयनं नमो वज्ञानं नमो लोहे सर्वसाम नमो यंत्रानं नमो सिद्धानं नमो आयनं नमो वज्ञानं नमो लोहे सर्वसाम नमो यंत्रानं नमो सिद्धानं नमो आयनं नमो वज्ञानं नमो लोहे सर्वसाम।